एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे महान विचारक के विचारों की गहराई में उतर रहे हैं जिनका नाम पूर्वी एशियाई सभ्यता और संस्कृति से लगभग जुड़ सा गया है, कन्फ्यूशियस।
वैसे उनका असली नाम कोंगच्यू था और शिष्टाचार नाम ज़ोंगनी।
हाँ, पर दुनिया उन्हें कन्फ्यूशियस के नाम से जानती है। शायद कोंगफूजी से बना है, गुरु कोंग।
सही, ये चीन के थे, लू राज्य के, और इनका समय लगभग 551 से 419 ईसा पूर्व का है ना?
जी, पूर्वी झौ राजवंश का दौर था वो।
तो आज हमारी कोशिश रहेगी कन्फ्यूशियस के जीवन, उनके दौर की जो उथल पुथल थी, उनके मुख्य विचार और उनकी आज तक जो विरासत है उसे समझने की।
बिल्कुल, देखते हैं कि ये 2500 साल पुराने विचार आज भी हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। हाँ, तो शुरुआत उनके समय से करते हैं। कैसा था वो दौर?
देखिए, कन्फ्यूशियस का समय, जिसे वसंत और शरद काल कहते हैं, यानी करीब 771 से 476 ईसा पूर्व, वो चीन के इतिहास में बड़ी उथल पुथल का दौर था।
अच्छा,
कहने को जो राजवंश था पर राजाओं की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और वो आपस में लड़ते रहते थे। तो एक तरह का राजनीतिक और आप कह सकते हैं नैतिक संकट का माहौल था।
समझ गया।
लेकिन इसी अराजकता ने, इसी अनिश्चितता ने विचारों की एक जबरदस्त लहर पैदा की जिसे 100 विचारधाराओं का युग कहा जाता है।
अच्छा, 100 विचारधाराओं का युग।
जी, अलग अलग विचारक समाज को फिर से, यूं कहिए, पटरी पर लाने के लिए अपने अपने नुस्खे पेश कर रहे थे।
और कन्फ्यूशियस, उन्होंने क्या किया?
कन्फ्यूशियस ने कोई एकदम नया रास्ता नहीं खोजा, वो पुराने पश्चिमी झो राजवंश के दौर को एक आदर्श मानते थे।
स्वर्ण युग जैसा।
हाँ बिल्कुल, एक स्वर्ण युग जब समाज में व्यवस्था थी, न्याय था। उनका मकसद था उसी पुराने आदर्श को फिर से जिंदा करना, अपने समय के नैतिक पतन को सुधारना।
तो वो परंपरावादी थे एक तरह से।
हाँ, पर सिर्फ परंपरावादी नहीं, वो मूल्यों को पुनर्जीवित और पुनर्व्याख्यायित कर रहे थे। उस दौर में और भी धाराएं थी, जैसे दाओवादी, लाउजी का नाम आता है, हालांकि उनकी ऐतिहासिकता पर थोड़ी बहस है।
हाँ, सुना है।
वो लोग समाज सुधार की बजाय प्रकृति से तालमेल पर जोर देते थे। फिर लीगलवादी थे,
वो क्या मानते थे?
वो मानते थे कि इंसान स्वभाव से स्वार्थी है, उसे केवल सख्त कानून और सजा से ही काबू में रखा जा सकता है। मोहिस्ट्स भी थे।
अच्छा,
कन्फ्यूशियस इन सबसे अलग थे। उन्होंने परंपरा तोड़ने की बजाय पुराने चीनी मूल्यों को नए सिरे से समझने और समझाने की कोशिश की।
ये तो हुई उनके समय की बात। अब जरा उनके अपने जीवन के बारे में बताइए। कहाँ जन्म हुआ, कैसा बचपन था?
उनका जन्म लू राज्य के कुफू शहर में हुआ था, जो आज के शेडोंग प्रांत में है। परिवार एक छोटे कुलीन वर्ग शी से था, लेकिन उनके जन्म के समय आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। पिता की मृत्यु जल्दी हो गई थी तो माँ ने ही गरीबी में उनका पालन पोषण किया।
लेकिन पढ़ाई लिखाई वो कैसे हुई?
गरीबी उनके सीखने के जज्बे को रोक नहीं पाई। वो बहुत जिज्ञासु थे, ज्यादातर उन्होंने खुद ही पढ़ लिख कर ज्ञान हासिल किया, स्वशिक्षित थे।
कमाल है।
और उन्होंने खुद को 6 कलाओं में माहिर बनाया, रीति रिवाज, संगीत, तीरंदाजी, रथ चलाना, सुलेखन, कैलीग्राफी और गणित।
यानी चौतरफा विकास पर जोर था।
बिल्कुल, शायद उनके शुरुआती जीवन के संघर्षों का ही असर था कि वो बाद में शिक्षा और योग्यता को इतना महत्व देते थे।
हाँ, ये हो सकता है।
युवावस्था में उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी किए, जैसे मुनीम, चरवाहा, क्लर्क।
अच्छा, और फिर आगे का जीवन कैसा रहा? शिक्षक बने, राजनीति में गए।
जी, उनके जीवन को कुछ मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। करीब 30 से 50 साल की उम्र तक वो मुख्य रूप से पढ़ाने का काम करते रहे, अपना स्कूल खोला और हर तरह के सामाजिक पृष्ठभूमि से शिष्य उनके पास आने लगे।
सबके लिए खुला था उनका स्कूल।
हाँ, ये एक बड़ी बात थी। फिर 50 के दशक में उन्होंने कुछ समय के लिए लू राज्य की सरकार में काम भी किया। शायद उम्मीद थी कि अपने विचारों को अमल में ला पाएंगे,
लेकिन वो शायद हो नहीं पाया।
पूरी तरह से नहीं। और शायद इसी निराशा में उनके जीवन का वो दौर शुरू हुआ जिसे भ्रमण वर्ष, वॉन्डरिंग ईयर्स कहते हैं, करीब 55 से 68 साल की उम्र के बीच।
13 साल तक।
हाँ, करीब 13 साल तक वो चीन के अलग अलग राज्यों में घूमते रहे, एक ऐसे शासक की तलाश में जो उनके बताए रास्ते पर चलने को तैयार हो।
और कोई मिला?
मान सम्मान तो अक्सर मिला, पर कोई भी शासक उनके सुधारों को पूरी तरह लागू करने को राजी नहीं हुआ।
ये तो दुखद रहा होगा।
हाँ, आखिरकार लगभग 68 साल की उम्र में वो वापस लू लौट आए और जीवन के आखिरी साल उन्होंने अपने वफादार शिष्यों को पढ़ाने और उन प्राचीन ग्रंथों को सहेजने और संपादित करने में लगाए जो बाद में चीनी संस्कृति की रीढ़ बने।
इसीलिए उन्हें चीन का पहला महान शिक्षक माना जाता है।
बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि जीते जी उन्हें राजनीति में ज्यादा सफलता नहीं मिली पर मृत्यु के बाद उनका प्रभाव कहीं ज्यादा बढ़ा।
तो उन्होंने खुद कोई किताबें नहीं लिखी, मतलब उनके विचार हम तक पहुंचे कैसे?
हाँ, ये जानना जरूरी है। कन्फ्यूशियस कोई ऐसे दार्शनिक नहीं थे जो बैठकर ग्रंथ लिखते हों। वो मुख्य रूप से एक शिक्षक थे, एक गुरु।
अच्छा।
उनके विचार, उनकी बातें, उनकी शिक्षाएं, ये सब उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों और अनुयायियों ने इकट्ठा करके लिखी।
और इनमें सबसे मुख्य कौन सी है?
सबसे अहम और भरोसेमंद मानी जाती है द एनालिक्स, लूनियू लोनियू।
एनालिक्स
जी, ये छोटी छोटी कहावतों, सवालों जवाबों और बातचीत का संग्रह है जो उनके शिष्यों ने याद करके दर्ज किया था। इसमें नैतिकता, अच्छा शासन, शिक्षा, एक आदर्श इंसान कैसा हो, इन सब पर गहरी बातें मिलती हैं।
और वो 5 क्लासिक्स, 5 क्लासिक्स, उनका क्या रोल है?
हाँ, पारंपरिक रूप से कन्फ्यूशियस को इन 5 प्राचीन ग्रंथों को संपादित करने या संकलित करने का श्रेय दिया जाता है।
कौन कौन से हैं ये?
इनमें शामिल हैं काव्य ग्रंथ, बुक ऑफ ओड्स, दस्तावेजों का ग्रंथ, बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रीति रिवाजों का ग्रंथ, बुक ऑफ राइट्स, परिवर्तनों का ग्रंथ, आई चिंग, और वसंत और शरद का इतिहास, स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स। ये सदियों तक चीन में पढ़ाई लिखाई और सरकारी अधिकारियों की भर्ती परीक्षा का आधार बने रहे।
समझ गया।
लेकिन कन्फ्यूशियस का असली योगदान शायद कुछ पुराने शब्दों को नया और गहरा अर्थ देने में था। उन्होंने कुछ खास अवधारणाओं को अपने दर्शन का आधार बनाया।
जैसे?
जैसे रैन। ये सबसे बड़ा गुण माना उन्होंने, मानवता, करुणा, सहानुभूति, मतलब एक नैतिक रूप से विकसित इंसान के अंदर का भाव, दूसरों के लिए प्रेम, दया, सम्मान, आप कह सकते हैं इंसानियत का सार।
रैन, मानवता। और
फिर है ली।
ली
ली, इसका मतलब है सही रीति रिवाज, सामाजिक व्यवहार के नियम, शिष्टाचार। ये रैन का बाहरी रूप है।
अच्छा, मतलब अंदर की अच्छाई बाहर कैसे देखें?
हाँ बिल्कुल, आपके व्यवहार में। ये बड़े बड़े राजकीय समारोहों से लेकर रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों, सब पर लागू होता है। ये समाज में तालमेल बिठाने का तरीका था।
और एक शब्द मैंने सुना है, जुन्जी।
हाँ, जुन्जी यानी अनुकरणीय व्यक्ति या सज्जन। पहले ये शब्द ऊंचे कुल में पैदा होने वालों के लिए होता था। कन्फ्यूशियस ने इसका मतलब बदल दिया।
कैसे?
उन्होंने कहा कि जुन्जी कोई भी बन सकता है, जन्म से नहीं बल्कि खुद को नैतिक रूप से साध कर, मेहनत करके।
ये तो बहुत बड़ी बात है, योग्यता को महत्व देना।
जी, और एक और है ज़ेंगमिंग, यानी नामों को सुधारना।
इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि समाज और शासन ठीक चले इसके लिए जरूरी है कि हम शब्दों का सही और ईमानदारी से इस्तेमाल करें, चीजों को उनके असली नाम से पुकारें, मतलब जो जैसा है उसे वैसा कहा जाए।
बिल्कुल, दिलचस्प। तो इन सब विचारों को मिलाकर देखें तो उनके दर्शन का निचोड़ क्या है, वो क्या हासिल करना चाहते थे?
मूल रूप से उनका लक्ष्य था समाज और व्यक्ति के अंदर तालमेल और सद्भाव पैदा करना।
हार्मनी।
हाँ, हार्मनी। ये एक तरह की सामाजिक और नैतिक व्यवस्था थी। उनका जोर मुख्य रूप से सद्गुण नैतिकता, वर्चू एथिक्स यानी अच्छे गुणों को अपनाने, और राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी पर था।
वो मानते थे कि एक अच्छा समाज तभी बनेगा जब लोग अच्छे होंगे।
बिल्कुल, नींव मजबूत होनी चाहिए। एक स्थिर और न्यायपूर्ण समाज केवल नैतिक व्यक्तियों की नींव पर ही बनाया जा सकता है।
और शासन के बारे में क्या विचार थे उनके?
हाँ, इसी से जुड़ा था उनका अच्छे शासन का सिद्धांत। वो मानते थे कि अच्छा शासन सिर्फ सख्त कानूनों या डर से नहीं चलता।
तो फिर कैसे चलता है?
शासक के अपने गुणों से अगर राजा खुद नेक हो, रेन मानवता और ली सही व्यवहार के साथ राज करे, तो प्रजा खुद ब खुद अच्छा बनने के लिए प्रेरित होगी।
लीड बाय एग्जाम्पल।
एग्जैक्टली। उन्होंने नैतिकता का केंद्र मानवीय रिश्तों को बनाया। समाज की व्यवस्था के लिए उन्होंने 5 बुनियादी रिश्ते बताए।
कौन से 5?
शासक और प्रजा, पिता और पुत्र, पति और पत्नी, बड़ा भाई और छोटा भाई, और दोस्त और दोस्त। इन रिश्तों में अपने अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करना ही सामाजिक सद्भाव लाता है।
ये तो काफी व्यवहारिक लगता है। अगर हम उनकी तुलना दुनिया के दूसरे बड़े विचारकों से करें, जैसे यूनान के प्लेटो या अरस्तु से, क्या अंतर या समानताएं दिखती हैं?
हाँ, ये तुलना काफी रोचक है। जैसे प्लेटो सत्य को अमूर्त, मतलब विचारों की दुनिया में खोजते थे, पारलौकिक रूपों में।
हाँ,
वहीं कन्फ्यूशियस का दर्शन जमीन से जुड़ा था, परिवार, समाज, रोजमर्रा के जीवन की हकीकत पर आधारित।
और अरस्तु, उन्होंने भी तो सद्गुण नैतिकता की बात की थी।
जी, अरस्तु ने भी की थी, लेकिन कन्फ्यूशियस ने रीति रिवाजों या और समाज में व्यक्ति की भूमिका और उसके कर्तव्यों पर कहीं ज्यादा जोर दिया। वो सामाजिक ताना बाना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था।
अच्छा, और चीन के ही दूसरे विचारकों से, दाऊवादी या लीगलवादी?
उनसे तो अंतर और भी साफ दिखता है। जहां दाऊवादी वू वे यानी अकर्मण्यता या समाज से हटकर प्रकृति के साथ जीने की बात करते थे,
हाँ, कम से कम दखल,
जी, वही कन्फ्यूशियस समाज में सक्रिय भूमिका निभाने और व्यवस्था बनाने पर जोर देते थे। और जहां लीगलवादी केवल कानून और सजा की बात करते थे, कन्फ्यूशियस ने नैतिकता और परंपरा के जरिए एक बीच का रास्ता दिखाया।
तो ना ज्यादा रहस्यवादी, ना ज्यादा कठोर।
हाँ, यूं कहिए कि वो ज्यादा व्यवहारिक और मानवीय थे।
ये तो उनके विचार थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? कैसे वो इतने प्रभावशाली बन गए?
उनका प्रभाव वाकई बहुत गहरा और दूर तक फैला। यकीनन वो पूर्वी एशिया के इतिहास के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक हैं।
ये तो है।
उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य जैसे मेंगजी और शुनजी ने उनके विचारों को और आगे बढ़ाया। लेकिन बड़ा मोड़ तब आया जब हान राजवंश 206 ईसा पूर्व 220 ईस्वी ने कन्फ्यूशियवाद को अपनी राजकीय विचारधारा बना लिया।
राजकीय विचारधारा मतलब सरकार ने अपना लिया?
हाँ बिल्कुल। और इसी विचारधारा ने चीन की मशहूर सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सिस्टम की नींव रखी।
ओह, वो परीक्षाएं जिनके बारे में पढ़ते हैं।
जी, ये सरकारी अधिकारियों को चुनने का एक तरीका था जो उनकी योग्यता पर आधारित था, ना कि जन्म पर। और ये परीक्षा कन्फ्यूशियस के पढ़ाए ग्रंथों पर ही आधारित होती थी।
और ये कब तक चली?
ये व्यवस्था चीन में लगभग 2000 साल तक, 1905 तक चली।
2000 साल, ये तो अविश्वसनीय है।
हाँ, जबरदस्त असर था। और समय के साथ उनके विचारों में और भी परतें जुड़ती गईं। जैसे सोंग राजवंश, सोंग डायनेस्टी में नव कन्फ्यूशियवाद उभरा, नियो कन्फ्यूशनिज्म। उसमें यूशी जैसे विचारकों ने दाओवाद और बौद्ध धर्म के कुछ तत्वों को भी कन्फ्यूशियस के विचारों के साथ मिलाया।
अच्छा, मतलब विचार भी विकसित होते रहे।
जी, और ये सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहा। उनके विचार कोरिया, जापान, वियतनाम तक फैले और वहां की संस्कृतियों और समाजों पर भी गहरा असर डाला।
तो सवाल उठता है कि आज के दौर में क्या कन्फ्यूशियस प्रासंगिक हैं? क्या उनके 2500 साल पुराने विचार आज भी मायने रखते हैं?
ये एक बड़ा सवाल है और इस पर लगातार बहस होती रहती है।
हाँ,
एक तरफ देखें तो शिक्षा का महत्व, बड़ों का आदर, परिवार के प्रति निष्ठा, समाज में सद्भाव बनाए रखने पर जोर, ये मूल्य आज भी कई पूर्वी एशियाई समाजों में बहुत गहरे बसे हुए हैं।
चीन में तो शायद फिर से उनको महत्व दिया जा रहा है।
हाँ बिल्कुल। हाल के दशकों में चीनी सरकार ने राष्ट्रीय पहचान और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए कन्फ्यूशियस के विचारों को फिर से आगे बढ़ाया है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पूर्वी एशिया के आर्थिक विकास में भी इन मूल्यों का हाथ है, जैसे शिक्षा, कड़ी मेहनत और सामाजिक अनुशासन पर जोर।
अच्छा।
और दुनिया भर में जो कन्फ्यूशियस संस्थान खुले हैं जो चीनी भाषा और संस्कृति सिखाते हैं, वो भी उनके वैश्विक प्रभाव का सबूत हैं।
लेकिन दूसरी तरफ की बहस क्या है? आलोचना किस बात पर होती है?
देखिए, आधुनिक बहसें भी हैं। विद्वान इस बात पर विचार करते हैं कि क्या कन्फ्यूशियस के विचार आज के लोकतंत्र, लैंगिक समानता और व्यक्तिगत अधिकारों के साथ मेल खाते हैं, या फिर वो परंपरा, पदानुक्रम, सत्ता के प्रति आज्ञाकारिता पर इतना जोर देते हैं कि वो आधुनिक मूल्यों के आड़े आते हैं। क्या वो अनिवार्य रूप से सत्तावाद और पितृसत्ता को बढ़ावा देते हैं?
ये गंभीर सवाल है।
जी, 20वीं सदी में ज़ू फुगुआन और तु वेमिंग जैसे विचारकों ने कन्फ्यूशियस की नैतिकता को आज के संदर्भ में ढालने की कोशिश भी की है।
चलिए उनके कुछ मशहूर कथनों पर गौर करते हैं, उनसे शायद उनके विचारों की और स्पष्ट झलक मिले। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, दूसरों पर वो मत थोपो जो तुम स्वयं नहीं चाहते।
हाँ, ये तो जैसे सुनोरा रूल का ही एक रूप है, उनकी नैतिकता का आधार। ये सहानुभूति और आपसी समझ शू पर जोर देता है, जो मानवता रैन पाने के लिए जरूरी है। बहुत बुनियादी और गहरी बात है।
बिल्कुल। एक और कथन सीखने के बारे में बहुत दिलचस्प है, सिर्फ पढ़ना और सोचना नहीं तो बेकार है, सिर्फ सोचना और पढ़ना नहीं तो खतरनाक है।
हाँ, ये दिखाता है कि वो सीखने के लिए संतुलन पर कितना जोर देते थे। केवल किताबी ज्ञान काफी नहीं, उस पर गहराई से विचार करना भी जरूरी है।
और सिर्फ सोचते रहना भी काफी नहीं।
बिल्कुल, सिर्फ अपने मन से सोचते रहना बिना ज्ञान हासिल किए वो भी सही नहीं। ज्ञान कोई पैदाइशी चीज नहीं बल्कि मेहनत और लगन से हासिल होता है। जैसा उन्होंने कहा, मैं वो नहीं हूँ जो ज्ञान के साथ पैदा हुआ था, मैं वो हूँ जो प्राचीनता से प्रेम करता है और उसे खोजने में मेहनती है।
वाह।
और वो जो जुन्जी या अनुकरणीय व्यक्ति की बात थी उसके बारे में?
हाँ, उसके बारे में कथन है। अनुकरणीय व्यक्ति अपनी बातों में विनम्र होता है, पर अपने कामों में बढ़कर होता है।
मतलब कथनी नहीं करनी, असली पहचान काम से है।
सही पकड़ा, दिखावे की बजाय ईमानदारी और असल काम पर जोर।
और भाषा की सच्चाई पर भी उनका कुछ जोर था, जेंगमिंग।
जी बिल्कुल, इस कथन से पता चलता है अगर भाषा सही नहीं है तो जो कहा गया है उसका वो मतलब नहीं निकलता जो इरादा था। अगर मतलब वो नहीं निकलता जो इरादा था तो जो काम होना चाहिए वो अधूरा रह जाता है।
मतलब सही संवाद कितना जरूरी है।
हाँ, प्रभावी शासन और सामाजिक व्यवस्था के लिए सटीक ईमानदार संचार मौलिक है। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, ऐसा नहीं है कि उनकी हमेशा तारीफ ही हुई, आलोचना भी तो हुई होगी।
हाँ बिल्कुल, पुराने समय में भी और आज भी। पारंपरिक रूप से देखें तो लीगल वादियों ने उनके इस विचार को कि शासक के अच्छे होने से प्रजा अच्छी हो जाएगी बचकाना कहकर खारिज कर दिया।
उनका क्या तर्क था?
उनका मानना था कि इंसान तो स्वार्थी है, उसे केवल डर और सजा से ही सीधा रखा जा सकता है, नैतिकता वगैरह से काम नहीं चलेगा।
अच्छा,
और दाऊवादी?
दाऊवादी जैसे जुआंगजी, उन्होंने कन्फ्यूशियस के रीति रिवाजों और सामाजिक नियमों पर इतने जोर देने का मजाक उड़ाया, कहा कि ये सब बनावटी बंधन है जो इंसान को सहज नहीं रहने देते।
और आधुनिक समय में, खासकर 20वीं सदी में?
20वीं सदी में, विशेष रूप से चीन में, कन्फ्यूशियसवाद पर बहुत हमले हुए। मई फोर्थ मूवमेंट 1919 और फिर सांस्कृतिक क्रांति 1966-76 के दौरान कन्फ्यूशियसवाद को चीन की पिछड़ेपन और कमजोरी का कारण माना गया।
क्या आरोप थे? उस पर आरोप लगे कि वो तानाशाही, सामाजिक जड़ता, भाई भतीजावाद और औरतों के दमन को बढ़ावा देता है और व्यक्तिवाद और वैज्ञानिक सोच को दबाता है।
सांस्कृतिक क्रांति में तो काफी नुकसान भी हुआ शायद।
हाँ, उस दौरान कन्फ्यूशियस के मंदिरों और किताबों तक को नष्ट कर दिया गया और आज भी ये बहस चलती रहती है कि उनके विचार लोकतंत्र, बराबरी और व्यक्तिगत आज़ादी के साथ कितने मेल खाते हैं।
ये तो गंभीर आलोचनाएं हैं। चलिए अब कुछ हल्की फुल्की और रोचक बातें भी जानते हैं कन्फ्यूशियस के बारे में। मैंने सुना है उन्हें संगीत से बहुत लगाव था।
हाँ, उन्हें संगीत से गहरा प्रेम था। वो मानते थे कि संगीत में इंसान के चरित्र को सुधारने और समाज में सद्भाव लाने की अद्भुत शक्ति होती है।
कोई किस्सा है इससे जुड़ा?
एक किस्सा मशहूर है कि एक बार उन्होंने कोई प्राचीन दरबारी संगीत सुना और वो इससे इतने प्रभावित हुए कि कहते हैं 3 महीने तक उन्हें खाने में मांस का स्वाद ही नहीं पता चला।
अरे वाह, और उनके डील डॉल के बारे में भी कुछ सुना है?
हाँ, इतिहासकार सिमा कियान के अनुसार कन्फ्यूशियस का कद असामान्य रूप से लंबा था, 9 ची से ज्यादा, जो शायद आज के हिसाब से 6 फीट से भी ज्यादा रहा होगा।
उस जमाने के हिसाब से तो बहुत लंबे थे।
हाँ बहुत, कहते हैं कुछ शिष्यों को तो शुरू में उनका ये लंबा चौड़ा डील डॉल थोड़ा अजीब भी लगा था।
और उनके निजी जीवन के बारे में कुछ असामान्य?
उनके निजी जीवन के बारे में एक बात जो उस जमाने के हिसाब से थोड़ी अलग थी वो ये कि कन्फ्यूशियस ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था।
अच्छा, वजह पता है?
वजह तो ठीक ठीक पता नहीं, इतिहास में खो गई है, लेकिन ये दिखाता है कि उनका जीवन शायद उतना सीधा, सरल और आदर्श नहीं था जैसा कभी कभी चित्रित किया जाता है। वो भी एक इंसान थे अपनी जटिलताओं के साथ।
हाँ, ये मानवीय पहलू जानना भी जरूरी है।
बिल्कुल, वो भावनाओं से परे नहीं थे। एक बार किसी ने उन्हें कोई अनुचित तोहफा भेजा तो उन्होंने उससे मिलने से ही मना कर दिया, और जब उनके एक प्यारे शिष्य की जवानी में मौत हुई तो वो सबके सामने फूट फूट कर रोए थे।
और क्या वो अलौकिक बातों में विश्वास रखते थे?
नहीं, वो ऐसी बातों से बचते थे। भूत प्रेत या आत्माओं के बारे में बात करना पसंद नहीं करते थे। जब किसी ने उनसे मृत्यु के बारे में पूछा तो उनका मशहूर जवाब था, जब तक जीवन को ही ठीक से नहीं जानते तो मृत्यु के बारे में क्या जान सकते हैं।
वाओ, पूरा ध्यान इसी दुनिया पर।
हाँ, इसी जीवन और इंसानी रिश्तों पर। और एक और रोचक बात, उनके गृह नगर कुफू में उनके परिवार के निवास स्थान को संभाल कर रखा गया और वहीं से उनकी कब्र पर तीर्थ यात्रा की परंपरा शुरू हुई जो आज तक जारी है।
तो कुल मिलाकर देखें, कन्फ्यूशियस सिर्फ कोई हवा हवाई सिद्धांत बनाने वाले दार्शनिक नहीं थे। वो इंसानी रिश्तों, समाज चलाने और खुद को बेहतर बनाने के लिए एक व्यवहारिक रास्ता बताने वाले गाइड थे।
बिल्कुल सही कहा, उनकी असली प्रतिभा शायद इस बात में थी कि उन्होंने समाज के सद्भाव को व्यक्ति के नैतिक विकास से जोड़ा और उसे रीति रिवाजों, ली और सही रिश्तों के जरिए हासिल करने का तरीका बताया।
हाँ, मतलब व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था को एक साथ पिरो दिया।
जी।
शिक्षा, सहानुभूति और नैतिक नेतृत्व पर जोर देकर उन्होंने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसने 2000 साल से भी ज्यादा समय तक दुनिया की एक बड़ी आबादी की सोच और जीवन को दिशा दी।
और वो आज भी प्रासंगिक इसलिए लगते हैं क्योंकि वो उन बुनियादी सवालों से जूझ रहे थे जो हम आज भी पूछते हैं।
हाँ, वही सार्वभौमिक मानवीय चुनौतियाँ। हम अपनी व्यक्तिगत तरक्की और सामाजिक जिम्मेदारी में संतुलन कैसे बिठाएं? सत्ता का इस्तेमाल न्याय के साथ कैसे हो? शिक्षा किसी व्यक्ति और समाज को कैसे बदल सकती है?
सही बात है। हो सकता है कि उनके बताए कुछ खास रीति रिवाज आज पुराने लगें, लेकिन उनका जो मूल संदेश है कि इंसान की खुशी और समाज की भलाई अच्छे रिश्ते निभाने और नैतिक गुण विकसित करने में है, ये आज भी बहुत मायने रखता है। हाँ, आज की हमारी दुनिया जो इतनी जुड़ी हुई भी है और बंटी हुई भी, उसमें नैतिक शिक्षा, एक दूसरे का सम्मान, बातचीत और विविधता में तालमेल बिठाने पर कन्फ्यूशियस का जोर हमें बेहतर समाज बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सबक दे सकता है।
तो अंत में यही सवाल बचता है कि कैसे हम इस प्राचीन ज्ञान का उपयोग करें?
हाँ, यही सवाल हमें सोचना चाहिए। कन्फ्यूशियस जैसे प्राचीन ज्ञानियों की बातें उनकी पिछली सीमाओं को दोहराए बिना आज हमारे जीवन और समाज में व्यवस्था खोजने में कैसे मददगार हो सकती हैं?
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।